नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। दिल्ली सरकार ने शहर को स्वच्छ और साफ रखने के लिए नगर निगम को 175 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की। सामाजिक कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने आज दिल्ली नगर निगम के कई वार्ड का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट के ऑनलाइन रिन्यूअल के लिए नए डिजिटल पोर्टल का शुभारंभ किया। लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 2 और 3 अब यात्रियों के लिए खोल दिए गए हैं। और विश्व मुक्केबाजी कप कल से 20 नवंबर तक शहीद विजय सिंह पथिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली सरकार ने शहर को स्वच्छ और साफ रखने के लिए नगर निगम को 175 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की है। राजधानी के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि निगम ने पहले पिछले अव्यवस्थाओं को दूर करने के लिए सरकार तेजी से काम कर रही है। श्री सूद ने बताया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर सभी मंत्री विभिन्न क्षेत्रों में सफाई कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं।
सारे मंत्री इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री जी आज दिल्ली की सड़कों पर है। हम रोज इस कूड़े की व्यवस्था को ठीक करने के लिए प्रयासरत हैं। हमारी कैबिनेट में नगर निगम को और जो भी मदद चाहिए वो देने के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव लाकर एक्स्ट्रा पैसा देने के लिए भी हम प्रयासरत हैं। मगर 27 वर्षों से गैर जिम्मेदारा तरीके से प्रशासन को चलाने का जो काम पिछली सरकारों ने किया है, हम पूरी जिम्मेदारी के साथ इस व्यवस्था को ठीक करने में लगे।
इसी कड़ी में श्री सूद ने आज राजौरी गार्डन के कई क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने निगम के अधिकारियों, सफाई कर्मचारियों और कूड़ा उठाने वाली एजेंसी के प्रतिनिधियों को चेतावनी देते हुए कहा कि जिन क्षेत्रों में कूड़ा जमा होने की समस्या रहती है वहां नियमित सफाई की जाए। सामाजिक कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने आज दिल्ली नगर निगम के कई वार्डों का निरीक्षण किया। इसके अंतर्गत उन्होंने सफाई व्यवस्था, कचरा प्रबंधन, नालों की स्थिति और जमीनी स्तर पर चल रहे कार्यों की समीक्षा की। इस अवसर पर श्री सिंह ने आयुष्मान आरोग्य मंदिर सर्वे के अंतर्गत नागरिक सुविधाओं और जनसेवा से जुड़े मुद्दों का आकलन भी किया। उन्होंने अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। श्री सिंह ने कहा कि दिल्ली के हर नागरिक को स्वच्छ, सुरक्षित और व्यवस्थित वातावरण मिले। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट के ऑनलाइन रिन्यूअल के लिए नए डिजिटल पोर्टल का शुभारंभ किया। ये पोर्टल नागरिकों को घर बैठे पारदर्शी और सुविधाजनक तरीके से अपना फायर सर्टिफिकेट नवीनीकृत कराने की सुविधा प्रदान करेगा। साथ ही इस पोर्टल पर आवेदन की प्रत्येक स्थिति को ऑनलाइन देखा जा सकता है। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि दिल्ली के फायर विभाग में लगातार कई बदलाव किए जा रहे हैं। व्यापार सुगमता की दिशा में फायर विभाग की ये पहल सराहनीय है। उन्होंने कहा कि फायर सर्टिफिकेट के नवीनीकरण की प्रक्रिया अब पूरी तरह बदल दी जाएगी, जिससे नागरिकों को सरल, त्वरित और विश्वासपूर्ण प्रणाली प्राप्त होगी।
पहली बार दिल्ली के इतिहास में हमारे फायर विभाग द्वारा इस पूरे प्रोसेस को, जिसमें फायर सर्टिफिकेट का रिन्यूअल जो है वो डिजिटलाइज होगा, ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से होगा, जो पोर्टल आज हमने लॉन्च किया है, जिसमें पूरे तरीके से पारदर्शिता के साथ साथ प्रोसेस को इजी करके ट्रांसपेरेंसी के साथ जो पूरा का पूरा काम हर स्टेज पे उस फाइल की मूवमेंट व्यक्ति को पता होगी, वो उसे सर्च कर सकते हैं और अपने सर्टिफिकेट को इश्यू करवाने के लिए मिनिमम प्रोसेस के साथ आप अपना सर्टिफिकेट रिन्यू करवा सकते हैं।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज अपने विधानसभा क्षेत्र में बनने वाली अटल कैंटीन के निर्माण स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस के अवसर पर दिल्ली सरकार अटल कैंटीन योजना शुरू करने जा रही है। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि ये योजना राजधानी के 100 स्थानों पर शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कैंटीन में नागरिकों को मात्र 5 रूपये में स्वच्छ, गर्म और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। शिक्षा मंत्री आशीष सूद आज कला महाविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। श्री सूद ने समारोह में शामिल होकर स्नातक के विद्यार्थियों को उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि बच्चों की लगन और कड़ी मेहनत को इस उपलब्धि तक पहुंचते देखना प्रेरणादायक था। श्री सूद ने सभी विद्यार्थियों के उज्ज्वल, संपूर्ण और सफल भविष्य की कामना की। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने कहा है कि लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 2 और 3 अब यात्रियों के लिए खोल दिए गए हैं। सोमवार को दिल्ली में लाल किले के पास एक कार में हुए विस्फोट के बाद लाल किला मेट्रो स्टेशन बंद कर दिया गया था। दिल्ली यातायात पुलिस ने आज नेताजी सुभाष मार्ग और उससे जुड़े सर्विस रोड को यात्रियों की आवाजाही के लिए खोल दिया है। दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा जारी परामर्श में बताया गया है कि बीते सोमवार को लाल किले के पास हुए बम धमाके के कारण नेताजी सुभाष मार्ग पर यातायात प्रतिबंध कर दिया गया था। पुलिस ने बताया कि यात्री अब आवाजाही के लिए नेताजी सुभाष मार्ग का उपयोग कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने आज अवैध शराब की तस्करी करने वाले एक आरोपी को पकड़ा है। पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान 32 कार्टून अवैध शराब आरोपी के पास से जब्त की गई। आरोपी शराब को अवैध तरीके से बिक्री के लिए दिल्ली ला रहा था। पुलिस के अनुसार आरोपी का पहले भी आपराधिक इतिहास रह चुका है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। राष्ट्र आज भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में जनजातीय गौरव दिवस मना रहा है। केंद्र सरकार ने जनजातीय इतिहास को जीवित रखने के महत्व को समझते हुए 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया है। पिछले कुछ वर्षों में ये उत्सव जनजातीय गौरव सप्ताह के रूप में भी मनाया जा रहा है। इसे विभिन्न मंत्रालयों और राज्यों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों, प्रदर्शनियों और शैक्षिक गतिविधियों के साथ मनाया जाता है। पेश है रिपोर्टिंग डेस्क की ये रिपोर्ट।
पिछले 10 वर्षों में आदिवासी विकास का सपना अब एक राष्ट्रीय मिशन बन गया है। आदिवासी समुदायों पर होने वाले खर्च 2014 के 24,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 2024-25 में 1,25,000 करोड़ रुपए हो गया है। आज 42 मंत्रालय अनुसूचित जनजाति विकास कार्य योजना के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कौशल विकास और स्वच्छता जैसे क्षेत्रों में 200 से अधिक योजनाएं चला रहे हैं। पीएम जनमन मिशन के तहत कमजोर जनजातीय समूहों के विकास पर जोर दिया जा रहा है। इस मिशन के तहत अब तक 90,000 पक्के घर बनाए गए हैं और 92,000 से अधिक घरों में बिजली पहुंचा दी गई है। इसी मिशन के अंतर्गत 700 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स की अनुमति भी दी गई है ताकि स्वास्थ्य सेवाएं घर घर पहुंच सकें। वहीं करीब 6,700 गांवों में पाइप से पानी की सुविधा शुरू हो गई है और 1,000 आंगनवाड़ी केंद्र अब कार्यरत हैं। जनजातीय समूहों की शिक्षा पर भी सरकार विशेष ध्यान दे रही है। इस क्षेत्र में पिछले 10 सालों में 22,000 करोड़ रुपए से अधिक की छात्रवृत्ति दी गई है और हर साल लगभग 30 लाख आदिवासी छात्रों को छात्रवृत्ति मिल रही है। आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियों को सम्मान देने के लिए कई कार्यक्रम, स्मारक, प्रकाशन और विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। 10 राज्यों में 11 संग्रहालयों को मंजूरी मिल चुकी है, जिनमें से 3 शुरू हो चुके हैं। पहली बार आदिवासी सशक्तिकरण सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि न्याय, सम्मान और अवसरों से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। आदर्श की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नई दिल्ली स्थित संसद परिसर में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति ने कहा कि उनकी जयंती 2021 से देश भर में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जा रही है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने देशभक्ति की एक ऐसी ज्योति प्रज्वलित की जो पीढ़ियों तक जलती रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने भी भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पूरा देश आज मातृभूमि के गौरव की रक्षा में बिरसा मुंडा के अद्वितीय योगदान को श्रद्धापूर्वक याद कर रहा है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आज सरायकाले खां स्थित बंसेरा पार्क में आयोजित समारोह में बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि बिरसा मुंडा एक महान स्वतंत्रता सेनानी और जनजातीय नेता थे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जनजातियों को संगठित किया और उल गुलान आंदोलन चलाया। श्री सचदेवा ने बताया कि बिरसा मुंडा ने जनजातियों के अधिकारों और संस्कृति की रक्षा के लिए सदैव संघर्ष किया। उनका बलिदान आज भी प्रेरणा देता है। उपचार के लिए विश्वसनीय प्रत्यारोपण और किफायती दवाएं अमृत पहल के आज 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में अमृत की 10वीं वर्षगांठ पर कहा इस कार्यक्रम ने पिछले 10 वर्ष में रोगियों की लगभग 8,500 करोड़ रुपए की बचत की है। उन्होंने बताया कि विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 255 अमृत फार्मेसी हैं। ये दवाओं, प्रत्यारोपणों और अन्य उपभोग सामग्रियों सहित 6,500 से अधिक उत्पादों पर अधिकतम खुदरा मूल्य पर 50% तक की छूट प्रदान करती हैं।
10 years of journey.
अमृत के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हमें 10 वर्ष हो गए हैं और मुझे इस बात की खुशी भी है कि मैं अमृत के माध्यम से व्यापक जन सेवा कर पा रहा हूं। इसके लिए मैं HLL को भी बधाई देना चाहता हूं। ये सार्वजनिक क्षेत्र में HLL द्वारा किए गए अच्छे प्रयासों में से एक है। मुझे बताया गया है कि अब हमारे पास 255 फार्मेसीज हैं।
Now we have got 255 pharmacies.
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने आज दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर दिव्यांगों को निःशुल्क सहायक उपकरणों का वितरण किया।
इसके अंतर्गत लगभग 50 दिव्यांगजनों को हस्तचालित ट्राई साइकिलें प्रदान की गई। इस पहल का उद्देश्य दिव्यांगजनों के जीवन को सरल बनाना और उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इस पहल के अंतर्गत NCRTC ने दिव्यांग यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए नमो भारत स्टेशनों पर भी कई सुविधाएं उपलब्ध कराई है। NCRTC ने एशियाई विकास बैंक और जापान फंड फॉर प्रॉस्पेरस एंड रेजिलियंट एशिया एंड द पैसिफिक के सहयोग से गाजियाबाद में दिव्यांगजनों के लिए एक विशेष सहायक उपकरण वितरण कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में NCRTC के प्रबंधक निदेशक शलभ गोयल और वित्तीय निदेशक नमिता मेहरोत्रा शामिल हुए, जिसमें दृष्टिहीन दिव्यांग यात्रियों के लिए स्टेशनों पर स्पर्श पथ टेक्टाइल पाथ बनाए गए हैं। वहीं स्ट्रेचर और व्हीलचेयर की आसानी से आवाजाही के लिए बड़ी लिफ्ट लगाई गई है। इसके अतिरिक्त बुजुर्गों, दिव्यांग व्यक्तियों, महिलाओं और बच्चों सहित सभी यात्रियों के लिए लिफ्ट और एक्सेलेटर की सुविधा प्रदान की गई है। प्रादेशिक समाचार के लिए नितिका गुप्ता।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे ने देश के पूंजी बाजारों में भारतीय निवेशकों के बढ़ते भरोसे पर प्रकाश डाला। नई दिल्ली में शुरू हुए भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 में उन्होंने कल कहा कि अक्टूबर 2025 तक भारत में लगभग 13 करोड़ 60 लाख निवेशकों के 21 करोड़ से अधिक डीमैट खाते हैं, जो बाजार पर भरोसे का संकेत हैं। उन्होंने कहा कि रोज लगभग 1 लाख नए डीमैट खाते खोले जा रहे हैं, जो विशेष रूप से खुदरा निवेशकों के बीच बढ़ती रुचि को दर्शाता है। विश्व मुक्केबाजी कप कल से 20 नवंबर तक शहीद विजय सिंह पथिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया जाएगा। प्रतियोगिता के फाइनल की मेजबानी ग्रेटर नोएडा करेगा। इस आयोजन में 18 देशों के 130 मुक्केबाज भाग लेंगे। भारत सभी 20 श्रेणियों में प्रतिस्पर्धा कर रहा है, जिसमें मेजबान मीनाक्षी, निखत जरीन, जैस्मीन और स्वीटी बूरा जैसी विश्व चैंपियन शामिल हैं। लवलीन बोर गोहेन के चोटिल होने के कारण स्वीटी पहली बार इस वर्ष प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही हैं। उधर पुरुष मुक्केबाजों में अभिनाश जामवाल और हितेश भी स्पर्धा करते नजर आएंगे। दोनों ने इस वर्ष के विश्व कप सर्किट में 2-2 पदक अपने नाम किए थे। राजधानी में आज दिन के समय मौसम साफ रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 9.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार कल सुबह हल्की धुंध छाए रहने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली सरकार ने शहर को स्वच्छ और साफ रखने के लिए नगर निगम को 175 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की। सामाजिक कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने आज दिल्ली नगर निगम के कई वार्ड का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट के ऑनलाइन रिन्यूअल के लिए नए डिजिटल पोर्टल का शुभारंभ किया। लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 2 और 3 अब यात्रियों के लिए खोल दिए गए हैं। और विश्व मुक्केबाजी कप कल से 20 नवंबर तक शहीद विजय सिंह पथिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।